शांति। तो आज का हमारा विषय है मास्टर मर्सीफुल, और ये विषय आज की मुरली के वरदान से लिया गया है, क्योंकि बाबा ने कहा मास्टर मर्सीफुल भव। और उसकी मेथड क्या दी बाबा ने, कि शिक्षा के साथ साथ, शिक्षक बनने के साथ साथ रहम दिल बनकर क्षमा करने वाले बनो। अब प्रश्न उठता है कि हम रहम करके किसी को क्षमा करें और मास्टर मर्सीफुल बने, लेकिन कई बार बाबा कहते हैं दूसरों पर रहम करने से पहले खुद पर रहम करो। कहते हैं ना बाबा कभी कभी कि अगर खुद पे रहम नहीं किया होगा तो दूसरों पर रहम करना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो पहले हम बात करेंगे खुद पर रहम करने की। अगर खुद पर रहम करने में सफल होंगे तो दूसरों पर रहम करने में भी सफल होंगे, वरना खुद पे ही रहम नहीं हो पा रही है तो दूसरों को शब्दों में कह देने से मात्र कुछ होने वाला नहीं है। तो खुद पे रहम करना माना क्या होता है? आज के मुरली का ऊपर जो हेडिंग मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, क्या कहा मीठे बच्चों को आज बाबा ने? आसुरी गुणों को निकालकर ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। और फिर ये भी पूछा कि बाबा आकर कौन सी एक्ट करते हैं? कौन सी एक्ट करते हैं बाबा आकर के? ज्ञान और योग सिखलाने की। तो बाबा हमें कह रहे हैं आसुरी गुणों को निकालो, ईश्वरीय गुणों को धारण करो, और उसका आधार ज्ञान को पहले सीखो, योग सीखो, लगाओ, तब जाके हमको सफलता मिलेगी ना, कि हम आसुरी गुणों को छोड़ पाएंगे और ईश्वरीय गुणों को धारण कर पाएंगे। तो सफलता का आधार जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जो बाबा योग सिखा रहे हैं, उसमें पहले सफलता मिले हमें। तो हम कई बार देखते हैं कि वर्षों से हम ज्ञान सुन रहे हैं, और जैसे कहा कि ऑनलाइन के बाद तो बहुत सोर्सेस हो गए हमें ज्ञान प्राप्त करने के, तो वर्षों से सुन रहे हैं, अलग अलग सोर्स से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ डाउट अभी भी बने हुए हैं, कुछ न कुछ ज्ञान की स्पष्टता अभी भी नहीं है। न सिर्फ ज्ञान की, यहां तक कि योग की भी। थोड़े थोड़े दिनों के बाद वही प्रश्न सामने आएगा, योग लगाने की विधि क्या है? थोड़े थोड़े दिनों के बाद वही प्रश्न आते रहेगा। इसका मतलब हम योग लगाने में भी अभी पूरे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें पहले स्वयं पर रहम करना होगा कि अभी भी हमारे मन में जो संदेह है, जो क्लैरिटी का अभाव है, स्वयं के लिए ही योग लगाना है, जो उस ईश्वर से शक्ति भरनी अपने भीतर योग के माध्यम से। अगर अभी तक भी मेरे अंदर डाउट चल रहे हैं, शंकाएं उठ रही हैं, संशय उठ रहे हैं, तो पहला रहम तो मुझे अपने पर करना चाहिए। पहला रहम तो मुझे स्वयं पे करना चाहिए। और रहम माना क्या? चलो अब रहम करने के लिए हम तैयार हो गए, क्या करेंगे रहम में? कैसे करेंगे? जैसे दूसरे के लिए क्या कहा, शिक्षा के साथ साथ अगर क्षमा करेंगे तो क्षमा अपने आप क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएगी और उसमें परिवर्तन भी आ जाएगा। और शायद क्षमा के अभाव में सिर्फ शिक्षा देते रहे तो सामने वाला शायद न भी बदले, और अगर बदलेगा भी तो सकारात्मक रूप से नहीं नकारात्मक रूप से बन जाएगा, उदंड हो जाएगा ना। तो हमें भी अपने आप को चेक करना होगा, सबसे बड़ी रहम क्या है, सबसे बड़ी करुणा क्या है, सबसे बड़ी रहम सबसे बड़ी करुणा है कि हम स्वयं की अनुभूति सही रीति से कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, जो हम करें हमें उस पर पूरा यकीन हो कि हाँ यही सही मेथड है। और न सिर्फ ये सही मेथड है, क्योंकि अगर मेथड सही होगी तो उसके रिजल्ट भी दिखाई देगी ना, फिर तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे में क्या होना चाहिए वो भी दिखना चाहिए। तो हम स्वयं पर रहम करें। अब स्वयं पर कैसे रहम करें हम? तो हमारे ऊपर हम स्वयं पर रहम करें उसके लिए हमें जरूरी है हम अपने गुरु के पास चले जाएं। जैसे बाबा ने कहा, मेरी एक्ट है ज्ञान सिखलाने, और योग सिखलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है ना। तो शिक्षक तो वही है ना हमारा, पहला शिक्षक तो हमारा वो है, गुरु वो है। फिर भी शिक्षक और गुरु में भी अंतर होता है, तभी तो बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। कि टीचर जो शिक्षा देगा, गुरु ब्लेसिंग देगा कि जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को मैं प्रैक्टिकल रूप दे सकूं, उसके लिए जो अनिवार्य शक्ति है जो बच्चे को चाहिए वो मुझे प्रदान करे वो शक्ति, तो वो गुरु होगा। एक बच्चे को भी आप परिवर्तन करने के लिए कुछ शिक्षा दो, सिंपल सी एक बात कि बेटे रात में देर तक सोने के बजाय जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। हम कई बार रात जागते रहते हैं पढ़ने के लिए, तो माँ बाप कई बार कहते हैं कि बेटा पढ़ने की मनाही नहीं है आपको, पढ़ो, पर देर रात जागने के बजाय जल्दी सो के जल्दी उठ जाओ। अब जल्दी उठे तो सही, वो शिक्षा तो दे दी और उसने प्रॉमिस भी कर दी, कुछ बहुत अच्छी बातें सुना दी, उसको बता दी केस स्टडीज, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हुआ है, और स्वीकार कर लिया बच्चे ने कि ठीक है मम्मा, कल से मैं सवेरे जल्दी उठूंगा। कल सुबह हुआ वो तो सोया ही पड़ा है, माँ भी सोचती है भी रात को ही तो किया है प्रॉमिस, कोई बहुत दिन थोड़ी हुए, सोने दो। सोता है, फिर वो उठता है, फिर नहा धो के तैयार होके खाना खाता है और तब बातें करता है, बेटा रात को तो तूने प्रॉमिस किए थे, तो मम्मा फिर आपने उठाया क्यों नहीं? शिक्षा के साथ साथ सपोर्टिंग शक्ति भी कौन देगा जो शिक्षा दे रहा है? आपका फर्ज था ना मुझे जगह देती। तो ऐसे ही बाबा हमें सिखा रहा है, पर जो सिखा रहा है मैं उसको प्रैक्टिकल भी कर सकूं, उसकी भी शक्ति मुझे वहीं से मिलनी चाहिए। पर उसकी शक्ति मुझे मिले उसके लिए क्या जरूरी है? गुरु से ब्लेसिंग्स कब मिलती है? जब गुरु के प्रति समर्पण। और एक सुंदर शब्द आता है गीता में, शरण। तुम मेरी शरण में आ जाओ, शरणागति हो जाओ। अंतर है इनमें थोड़ा थोड़ा। शरणागति हो जाओ का मतलब क्या है? इसके शाब्दिक अर्थ को अगर समझेंगे ना, इसकी बहुत डीप मीनिंग समझ में आएगी। जैसे नहीं, दूसरे देश के लोग अपने देश में आते शरणार्थी बनके, तो क्या करते हम उनके लिए? और दूसरे देश से हमारे देश में आए, माना हमारे एरिया में आए, हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र में आकर शरण की रिक्वेस्ट, मतलब अब इस देश की फैसिलिटीज उनको दे दी जाएगी। ऐसी शरणागति का मतलब होता है कि भगवान भी कहता है मेरे क्षेत्र में आ जाओ, मेरे क्षेत्र में आ जाओ। और जब तुम मेरे क्षेत्र में आ जाओगे ना, तो तुम्हारे में परिवर्तन लाने के लिए जो गति चाहिए ना, वो गति मैं तुमको दे दूंगा। शरणागति, कि जब किसी क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहां पर से मुझे वो, क्योंकि एक फील्ड है ना, क्षेत्र माना फील्ड है, जहां कुछ एक मैग्नेटिक पावर है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, जैसे आजकल हम कहते हैं कि ऑनलाइन सेवाएं हो रही है। हाँ, कई बार ऑनलाइन से पहले भी लोग कोर्स कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम डेली तो नहीं आ सकते। तब भी हम क्या कहते हैं उनको, कि भले भाई साहब, भले बहन जी, आप पूरा जो टाइम है हमारा मुरली क्लास का, भले आप उस टाइम पे मत आओ, आपका जो रूटीन है उसमें अगर वो टाइम सेट नहीं हो रहा है तो भले आप उसमें नहीं आओ, पर सेवा केंद्र पर विजिट जरूर दो, 15 मिनट 20 मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्थान क्या है, स्पिरिचुअली चार्ज्ड है। और ऐसे स्पिरिचुअली चार्ज्ड वातावरण में जब आप आएंगे, आपको करना कुछ नहीं होगा, यहाँ का वातावरण ही आप में परिवर्तन लेकर आएगा। कहते नहीं कहते हम लोग, तो बाबा भी कहता है शरणागति हो जाओ। जब शरणागति हो जाएंगे तो फिर वो अपनी गति से हमें गति प्रदान कर देगा। अपनी गति से हमें गति प्रदान कर देगा का मतलब क्या है, कि जैसे बाबा ने कहा कि आसुरी गुणों को छोड़ो और ईश्वरीय गुणों को धारण करो। अब बाबा कहता है कि तुम मेरी डिट्टो कॉपी हो, जो मैं हूं सो तुम हो, सिर्फ फर्क क्वांटिटी का है, बाकी तो वो शांति का सागर, हम शांति के स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। मतलब जो गुण उसके पास है मेरे पास भी है, लेकिन अभी वो गुण मेरे सोए पड़े हैं, क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ी हुई है, आसुरी गुणों की। वो एक्टिवेट कर देगा, हम उसके क्षेत्र में आते ही हमारे वो गुण क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। जैसे नहीं, छोटे बच्चे को आप देखो, जो बहुत छोटे हैं, वो कैसा भी हो, गरीब घर का हो, किसी जाति का क्यों नहीं हो, काले रंग का हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन कैसा भी हो, पर वो छोटा बच्चा है, उसके चेहरे से वो प्योरिटी रेडिएट हो रही है, और आप उसकी तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। आप चाहे कितने ही गमी में, उदासी में खोए हुए थे, लेकिन उस बच्चे पर नजर पड़ते ही पल भर के लिए आपकी उदासी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी प्योरिटी आपके अंदर भी है तो सही ना, ऐसे थोड़ी की नहीं है, पर उसकी प्योरिटी ने आपको क्या कर दिया, आपकी प्योरिटी को, आपके गुणों को एक्टिवेट कर दिया। तो इसलिए हमें शरणागति होना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान समझ लेना ही काफी नहीं है। जब तक शरणागति नहीं आई है, डाउट्स बने रहेंगे। सही अर्थों में सेल्फ रियलाइजेशन, सही अर्थों में गॉड रियलाइजेशन नहीं हो सकेगा। और शास्त्रों में इसकी एक बहुत सुंदर मिसाल आती है। आज के मुरली में गीत कौन सा था? ओम नमः शिवाय। हमने उसको बजाकर देखा मुरली में, ऑफिशियल जो आती है ना वेबसाइट, कि ओम नमः शिवाय में कौन सा गीत है उसमें। तो उसमें ओम नमः शिवाय के आगे था पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम हो हमारे रखवारे। पर हमारी बुद्धि में एक दूसरा भी गीत गूंज रहा था। ये एक आता है ना, ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, जिसमें शिव के अलग अलग नाम वर्णन करते हैं, जैसे कि रामेश्वराय, हाँ सोमेश्वराय, विश्वेश्वराय, कोटेश्वराय, महाकालेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय। और बाबा ने कहा आज ये गीत शोभता है क्योंकि उसमें शिव शब्द है ना। तो बाबा ने कहा रुद्र बाबा अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा लगता है? शिव बाबा अच्छा लगता है। तो इस गीत में भी शिवाय शिवाय मतलब उस शिव के अलग अलग नाम आ रहे हैं, जिसमें एक है महाकालेश्वराय। और महाकाल मतलब कालों का भी काल। और उज्जैन में ये महाकालेश्वर का मंदिर है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसमें इसकी एक अलग विशेषता है। है तो हर एक में अपनी अपनी यूनिकनेस, पर इसकी एक विशेषता ये है कि ये महाकालेश्वराय जो है दक्षिण मुखी दिखाया गया है। कैसा दिखाया है? दक्षिण मुखी। सिंपल मीनिंग है उसकी, क्या सिंपल मीनिंग है? दक्षिण की तरफ उसका मुख है, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख है। ऐसे ही एक शास्त्रों में मिसाल आती है दक्षिणामूर्ति शिव। सुना है? नहीं सुना है? सुना है? किस किस ने सुना है, जरा हाथ खड़ा करें। एक दो, बहुत कम लोगों ने सुना है। और उसका एक कारण है कि इसका नाम बहुत कम लोगों ने क्यों सुना है, कि साउथ इंडिया में ही कुछ हिस्से में इसके मंदिर हैं, बाकी हिस्से में दक्षिणामूर्ति शिव के मंदिर नहीं है। पहले हुआ करते थे, लेकिन जैसे सभी को पता है अंग्रेजों ने आकर बहुत कुछ किया, हमारे शास्त्रों को जलाने लुटाने छिपाने की बहुत कोशिश की, मंदिरें तोड़े, तो इस कारण से वो सभी जगह उपलब्ध नहीं है वो मंदिर। लेकिन अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर, अभी अभी माना कुछ साल पहले, पूना के आउटस्कर्ट्स में भी दक्षिणामूर्ति शिव का मंदिर बनाया गया है। मैं नेट पे चेक कर रही थी तो मुंबई में भी कहीं उसने दिखाया कि वो मूर्ति है करके। तो उस दक्षिणामूर्ति के लिए क्या गायन है शास्त्रों में, कि दक्षिणामूर्ति मतलब दक्षिण प्लस अमूर्ति, दक्षिण प्लस अमूर्ति। और दक्षिण माना जो दक्ष है, मतलब इस शब्द की अलग अलग डेफिनेशन की गई है। एक निकाली है कि दक्षिण माना दक्ष है, जिसमें दक्षता है, और अमूर्ति माना मूर्ति का अपोजिट, मूर्ति माना जिसको नाम रूप है, और अमूर्ति माना जिसको नाम रूप नहीं, मतलब साकार नाम रूप नहीं है। लेकिन दक्ष है मतलब है तो बहुत कैपेबल, बहुत क्षमताओं से भरा है, लेकिन उसका नाम रूप नहीं है। कौन है वो? हमारा शिव बाबा। शिवाबाई तो है ना। और उसमें शास्त्रों में ये भी बात आती है कि कल्प के जो आदि मध्य अंत की बात आती है वो दक्षिणा मूर्ति ही आके इसका भेद खोलता है। जब आता है कल्प के अंत में आता है और ये सारा भेद खोलता है। और किसके सामने खोलता है ये भेद, तो कहा प्रीवियस कल्प में जिन्होंने जिसके सामने खोला था उसी के सामने खोलते हैं। नहीं लगता है हमारी यादगारें हैं, ये हमारी यादगारें हैं, नहीं है दक्षिणामूर्ति शिव। और उसमें ये बताते हैं, अलग अलग वर्शन आते हर कहानी के। एक बताते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि कुमार कहे जाते हैं। चारों का इकट्ठा नाम सनकादि ऋषि बोल देते हैं। और ये क्या है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ये चारों जो ऋषि हैं। और इनकी आयु बताते हमेशा छोटी, 5 या 8, जैसे कहा ना कहानी के अलग अलग वर्शंस होते हैं, किसी में 5 बताते हैं और किसी में 8 बताते हैं। और सारी उम्र वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सारी उम्र ज्ञान के अध्ययन में लगाते हैं। लेकिन वो तलाश में है एक ऐसे गुरु की कि जो इतना ज्ञान हमने पढ़ा है, समझा है, लोगों को शेयर कर रहे हैं, फिर भी हमारे में कुछ डाउट्स हैं। हमारे पूरे डाउट्स अभी भी खत्म नहीं है। तो वो तलाश में कोई एक ऐसा गुरु मिले कि जिनके सामने जाकर, जिनकी शरणागति होकर हम उसकी करुणा से, उसकी कृपा से अपने सारे डाउट्स को खत्म कर ले। हमारे भीतर जो आसुरियता, जैसे बाबा ने कहा ना, वो जो भी है जन्मों जन्मों की, उससे हमें मुक्ति मिले और हम सच्चे अर्थों में आत्मा अनुभूति कर सकें, सच्चे अर्थों में परमात्मा अनुभूति कर सकें। और ऐसी तलाश करते करते कहते कैलाश की तरफ से वो निकले और वहां देखे कि हिमालय वहां कि वहां पे दक्षिणामूर्ति आके विराजमान हुए हैं। और दक्षिणामूर्ति शिव, जो मैंने कहा ना दो अलग अलग मीनिंग, एक तो बताया दक्षिण माना जो दक्ष है और अमूर्त है मतलब नाम रूपनी, दूसरा है ऐसी मूर्ति जिसका फेस दक्षिण की तरफ, परंतु मूर्ति है मतलब नाम रूप है, आकार है। हाँ, तो शिव के आकार में भी कुछ तो शिवलिंग के रूप में दिखाया है और कुछ मूर्ति के रूप में, जैसे नटराज। नटराज कौन सा रूप है, मूर्ति का रूप हो गया ना, ऐसे दक्षिणा मूर्ति शिव भी मूर्ति के रूप में है। और उसमें दिखाते हैं कि वो बैठे हैं पहाड़ पे किसी थल्ले पे और चेहरे से, और वो यंग दिख रहे हैं 16 वर्ष के, और चेहरे से दिव्यता पवित्रता की किरणें जिसे फूट फूट कर निकल रही है, आंखें अर्ध खुली हैं, 4 हाथ हैं, वीरासन में बैठे हैं, एक पांव दूसरे के ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, और चारों हाथ में कोई ना कोई अलंकार है। और वो नीचे सप्तर्षि बैठे हैं और ये सनक सनकादि जो 4 ऋषि आए हैं वो भी उनकी प्रदक्षिणा करके आके उनके सामने बैठे हैं। और आके जब वो बैठे हैं, इन्होंने न तो शब्दों से कम्युनिकेट किया है और न ही उधर से कोई शब्द कम्युनिकेट हुए हैं, लेकिन साइलेंस में सब कुछ घटित हो गया। साइलेंस में सब कुछ घटित हो गया। वो साइलेंस की मुद्रा में बैठे हैं, आनंद की मुद्रा है, साइलेंस की मुद्रा है, दिव्यता झलक रही है, यंग है। और ऋषि कुमार जो कहा कि जिनकी 5 या 8 वर्ष की आयु दिखाते हैं, यहाँ पे उनको दाढ़ी वाला दिखा दिया, मतलब क्या। और जब वो श्लोक आते हैं तो उसमें बताते कि गुरु युवा है और शिष्य वृद्ध है। लेकिन एक शब्द है वहां पे जो बहुत ही अंडरलाइन करने वाला है, उसमें लिखा है तपोवृद्ध शिष्य। एक होता है वयोवृद्ध, हाँ वयोवृद्ध माना जो वय के कारण वृद्ध हुआ है, और तपोवृद्ध माना क्या होगा, जिसने लंबे समय से तपस्या की है, वो तपस्या का अनुभव है उसके पास। वैसे वो अनुभव नहीं है, लेकिन बाबा कहते ना कि जब मूर्ति के रूप में दिखाना होता है तो कुछ ना कुछ उनको दिखाना पड़ता है। अब बाबा तो है पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन समझे कैसे दुनिया, तो बड़े बड़े लिंग बना के रख दिए, है ना। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, उनको दाढ़ी मूछ वाला ऋषि दिखा दिया। लेकिन श्लोक में लिखा है तपोवृद्ध, वयोवृद्ध नहीं लिखा है, तो बात क्लियर हो जाती है। और उसमें लिखा है कि साइलेंटली जो इनके डाउट्स थे, उसमें कहानी में ऐसे आता है कि एक वर्ष तक तो इन्होंने वाचा कम्युनिकेशन किया, मतलब वाचा से अपने प्रश्न पूछे गए और उधर से डाउट दक्षिणामूर्ति भी वाचा से करते गए। लेकिन साल हो गया, लेकिन हर दिन उनका नया डाउट, हर दिन उनका नया डाउट, हर दिन उनका नया डाउट। और शिव जी समझ गए अब बहुत हो गया, क्योंकि ये ज्ञान योग जो है सिर्फ सुनने से काम नहीं बनता है, जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक शंकाएं के ऊपर शंकाएं उठती रहेगी। लेकिन जब हम रियल सेंस में खुद करते जाएंगे शंकाओं का भी समाधान, तो अनुभूति भी प्रगाढ़ होती जाएगी। तब कहते एक साल के बाद शिव ने मौन धारण कर लिया और इन्होंने भी कुछ नहीं बोला फिर, लेकिन उस मौन में ही कम्युनिकेशन हो गया। और उस मौन कम्युनिकेशन के माध्यम से इनके सारे डाउट क्लियर हो गए, इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, इनको गॉड रियलाइजेशन हो गया। और सिर्फ मौन नहीं, वो जो आकृति जो उनकी बनाई है उसमें कहते चिन्ह मुद्रा भी दिखाया है। चिन्ह मुद्रा इसको कहते, 3 उंगलियां इधर और ये उंगली अंगूठे से मिली, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ना वो, तपस्या करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सुनाते सुनाते, बहुत सारी बातें तो यहां थी ना उनके, पर डाउट थे क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। और दक्षिणामूर्ति ने आके प्रैक्टिकल करवाया। एक तो ऐसी मुद्रा रखी स्वयं शांत रहे, और शांति में रहकर अपनी शक्ति का पात, जिसको कहते शक्ति पात, या जिसको कहे ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, वो किया और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो उसमें बताया शरणागति, बताया 3 प्रदक्षिणा, कि अपने आप को सौंप दो उसके क्षेत्र में। जब आप आ जाएंगे उसकी ऊर्जा काम करेगी, उसकी ऊर्जा काम करेगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक विश्वास हो जाए ये सच्चा गुरु है, क्योंकि बताते उन ऋषियों के लिए, सनकादि ऋषियों के लिए, पहले ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ही पुत्र मानस पुत्र, लेकिन ब्रह्मा से ही उनको संतुष्टि नहीं हुई कि ये क्या मुझे समझाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएशन के कार्य में लगे हुए तो उनको गृहस्थी जैसा दिख रहा है और इन्होंने तो ठान लिया कि हमें तो ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीना है, तो उनको उन पे विश्वास नहीं बैठा। फिर विष्णु जी के पास गए तो वहां भी देखा कि इधर तो ब्रह्मा जी क्रिएशन के कार्य में लगे हुए हैं, तो सरस्वती बाजू में बैठी हुई है, मतलब एक फीमेल है। विष्णु जी के पास गए तो कहा विष्णु जी तो आराम से लेटे हुए हैं और पैरों को फीमेल माना लक्ष्मी दबा रही, तब भी तसल्ली नहीं हुई, ये कैसे गृहस्थी हमको ज्ञान सुनाएंगे ब्रह्म विद्या। तो फिर गए महेश के पास शंकर के, तो उसकी भी प्रवृत्ति दिखाई, गणेश जी है, बैल है, पार्वती है और अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखा उन्होंने, उनको तसल्ली नहीं, ये क्या हमको सिखाएंगे। और तब उनको लगा कि नहीं, कोई और गुरु ढूंढना चाहिए, और तब ये उनको मिला और इस पर उनकी आस्था बैठी। वहां आस्था नहीं बैठी थी, इस पर उनकी आस्था बैठी। कहते हैं जब पहले उन्होंने वाचा में भी कम्युनिकेशन किया ना, तो दक्षिणामूर्ति शिव ने कहा तुम तो वयोवृद्ध और मनोवृद्ध और मैं तो युवा। बोले जहां ज्ञान की बात होती है वहां पे वह कोई मायने नहीं रखती है, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके चार हाथों में से एक हाथ में शास्त्र भी दिखाए हैं कि अब क्या आता है। तो एक तो आस्था, पूर्ण आस्था श्रद्धा के साथ जब हम शरणागति होते हैं, और शरणागति का सिद्धार्थ उसकी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब जाके उसकी ऊर्जा ट्रांसमिट होती है उन साइलेंस के क्षणों में बहुत फास्ट। आज एक पेन ड्राइव में पहले फ्लैपी होती थी, छोटा सा अमाउंट डेटा का ट्रांसफर होता था, फिर पेन ड्राइव साइज 1-2 GB की होती थी, पहले जीबी भी नहीं होता था, कुछ किलोबाइट मेगाबाइट होता था, फिर पेन ड्राइव आई जीगाबाइट की भी बनने लग गई, अभी टेराबाइट, अभी तो पीटाबाइट भी आ गया है। यहां से वहां कितने सेकंड में ट्रांसफर होता है डेटा, और वो तो क्या है, शिव ओशन है, ओशन सर्वशक्तिमान है, कितनी शक्ति है उसके पास, उसकी ऊर्जा क्षेत्र में आकर। और जो चिन्ह मुद्रा दिखाई है ये भी साइलेंस हो गए हैं। साइलेंस सिर्फ यहां से नहीं, अंदर से भी, मन बुद्धि, मन मंकी माइंड की तरह चलता रहता है, अंदर चलता रहता है, चंचल मन है कहते हैं, बुद्धि कोई ना कोई संशय उठाती रहती है, संशय बुद्धि, और बीच बीच में ईगो मैं मेरापन करता रहता है। जब भी आप योग में बैठेंगे क्या होता है, मंकी माइंड इधर से उधर छलांग मारेगा, संशय बुद्धि कुछ ना कुछ संशय उठा देगी, ईगो कुछ न कुछ मैं और मेरे की बात कर लेगा, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसे क्यों करूंगी, वो बड़ी है कि मैं बड़ी हूं, कुछ भी, मतलब अंदर का सबको पता है क्या चलता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो कहा कि ये तीनों को साइड कर दिया और ये है आत्मा का प्रतीक और ये परमात्मा का प्रतीक, ये आत्मा इसको साइड में करके इसके प्रति समर्पित हो जाए, शरणागति हो जाए, और इसको साइड में कर दे माना मंकी माइंड का मंकीनेस खत्म हो जाए, संशय बुद्धि का संशय खत्म हो जाए, मैं और मेरापन का ईगो बैठ जाए, तब जाकर आत्मा और परमात्मा का योग लगता है, तब जाकर आत्मा की वो फ्रिक्वेंसी होती है जो परमात्मा की होती है, उसके क्षेत्र में पहुंचते ही वो हमारे ऊपर अपनी शक्ति को साइलेंटली बड़ी तेजी से ट्रांसमिट करता है और हमारे अंदर के विकर्म विनाश होते हैं, तो आसुरी गुण समाप्त होकर ईश्वरीय गुण जो हमारे भीतर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और योग करने के बाद भी उसकी झलक हमारे व्यवहार में होती है। तो ये है स्वयं पर पहले रहम करना है। जब स्वयं पर रहम किया हुआ होगा तब जाकर हम दूसरों पर रहम कर सकते हैं। कभी कभी मन में बात आती है, क्योंकि कहा ना ये तो उठाता रहता है, मंकी माइंड उछल कूद करता रहता है, बुद्धि लॉजिक क्रिएट करती है, लॉजिक के आधार से संशय खड़े करती है। ऐसा भी होता है कि बस उसके क्षेत्र में बैठ जाने से उसकी ऊर्जा मेरे में आ जाएगी। ऐसे तो हम कितनी बार बैठे हैं बाबा के पास योग में, बाबा तो कहता है परम धाम में आ जाओ, हम तो कितनी बार जाके बैठे हैं, पर जितना बाबा बोलता है कि मैं शक्ति दूंगा उतना तो अनुभव नहीं किया है हमने। होता है ना, मन बोलेगा ना अंदर से, तो इस लॉजिक को भी हमें क्लियरली समझ लेना पड़ेगा, इसके पीछे का विज्ञान, कि क्या विज्ञान इसके पीछे काम कर रहा होता है। कहते हैं संगीतज्ञों का ये बहुत बड़ा अनुभव है, एक बंद कमरे में दो कोनों में दो वीणाएं रख दी जाए, कमरा बंद है, एकांत है, खाली है, ठीक है, शर्त है कमरे की, कमरा बिल्कुल खाली हो, एकांत हो, बंद हो, और उसके दो कोनों में दो वीणाएं रख दी है। अब एक वीणा वादक एक कोने में रखी हुई वीणा के तार को छेड़ता है, जैसे ही वो तार को छेड़ता है संगीत उठता है, यही होता है ना। और जैसे ही यहां संगीत उठा है तारों को छेड़ने से, परंतु अब वहां जो दूसरे कोने में वीणा रखी है उसके तारों को फिजिकली नहीं छेड़ा गया है, लेकिन उसके तार भी आंदोलित हो गए, उसके तारों को भी मूवमेंट मिल गई और उसमें से भी संगीत उठने लग गया। ये सत्य अनुभव है संगीतज्ञों का। कैसे होता होगा ये? एक को तो फिजिकली किया भाई, छेड़ा तो संगीत उठा, लेकिन इधर तो छेड़ा ही नहीं, तो कैसे हो गया? तो कहा जब यहां पे हमने छेड़ा तो उसके वाइब्रेशन, कमरा कैसा है, खाली एकांत, तो वाइब्रेशन इजीली ट्रेवल करके उस वीणा के तारों को छूकर, जैसे कि वो तार सोई हुई थी उस तार को भी क्या कर दिया, जगा दिया, और जगते ही उसमें से भी संगीत उठ गया। तो वाइब्रेशन थेरेपी जिसको, थ्योरी जिसको बोलते हैं, लेकिन वाइब्रेशन वहां तक मूव कर सके रास्ता क्लीन होना चाहिए। फोन पर भी बात करते तो क्या कहते हैं, लाइन क्लियर नहीं होती है तो बात कहां होती है। हाँ, लाइन क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो जब कमरा खाली ना हो, एकांत ना हो, तब भी अगर रखे हो ऐसे दो, तो कुछ वाइब्रेशन तो इधर उधर खत्म हो जाते हैं ना, और वो थोड़ा सा जाके पहुंचता है और थोड़ा सा शायद उसको जगाने में इनफ नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बल्ब चालू हो, ट्यूबलाइट चालू हो, एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए होता है ना कि इतने वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तब जाके ये बल्ब या बल्ब इतनी रोशनी देगा, मिनिमम तो होता है ना। तो इसमें भी वो मिनिमम तो चाहिए होगा। तो जब वो खाली नहीं होता है कमरा, तब वो कुछ वाइब्रेशन इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं और थोड़े बहुत मिलते भी होंगे, पर वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है उसको छेड़ने के लिए। तो ये संगीतज्ञों का अनुभव है। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ जिसने इसको समझा, आज से 150-250 साल पहले इस विज्ञान को समझा, परंतु नाम नहीं लिया था, सिर्फ बोला हार्मनी। दोनों में क्या हो गया? तालमेल हो गया। जैसे हम आपस में नहीं कहते ट्यूनिंग, हम दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है, सो बोलते हैं ना कई बार, मेरी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं होती है। हाँ बोलते हैं, अरे वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पता नहीं मेरी तो उससे कोई ट्यूनिंग नहीं होती है, बोलते हैं ना। तो हार्मनी, लयबद्धता। तो इस लयबद्धता का नाम सिर्फ दिया, वैज्ञानिक तरीके से अभी कुछ नाम नहीं दिया गया था। तो अभी 40-50 साल पहले कार्ल गुस्ताव जिंग करके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उसने इसको नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। क्या नाम दिया? सिंक्रोनिसिटी। तो वो वैज्ञानिक जिसने लयबद्धता नाम दिया था इसको, हार्मनी नाम दिया था, उसने खोजा कि कैसे ये सब होता है। तो कहते एक वैज्ञानिक जो कि एक किले में ठहरा था और वो एक राजा का मेहमान था, डेफिनेटली उसको एक कमरा दे दिया गया, और जब कमरा दे दिया गया तो उस कमरे में ठहरा हुआ था, दीवार पर, एक दीवार पर दो घड़ियां लगी हुई थी। पुराने जमाने की बात चल रही है, 150 साल पहले की। तो पहले कैसी घड़ियां होती थी? पेंडुलम वाली, लोलक वाली, है ना। तो वो ऐसे लगी हुई थी घड़ियों पर। तो जब ये कमरे में गया तो उसने घड़ियों की तरफ जब ध्यान गया तो उसको हैरत हुई देखकर कि दोनों घड़ियों का जो पेंडुलम है वो एक रिदम में कैसे चल रहा है। जैसे अगर वो इस समय बीच में पहुंच रहा है तो उसका भी बीच में पहुंच रहा है। देखो यहां कितनी घड़ियां हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड का अंतर होता है या नहीं होता है। लेकिन वो हैरत में पड़ गया कि दोनों के पेंडुलम बिल्कुल एक रीति से चल रहे, कोई अंतर नहीं, सेकंड और मिनट का काटा भी इसमें, इस घड़ी में जहां पर है बिल्कुल डिट्टो उसी अंकों पे वहां पर है। उसको बड़ी हैरत हुई, ऐसे कैसे होता होगा ये। तो उसने सोचा दो ही बात हो सकती है, एक तो या तो ये संयोग होगा, कई बार बोलते ना संयोगवश हो जाता है, तो उसने सोचा या तो ये संयोग होगा या तो इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा होगा। तो पहले संयोग की चेकिंग की कि क्या ये संयोग है। तो संयोग की चेकिंग करने के लिए उसने क्या किया, रात में एक घड़ी को खुद होकर स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, और सुबह होने के बाद वापस उसको चालू किया और उस घड़ी से टाइम देखकर इसका टाइम सेट किया, लेकिन जानबूझकर 3-4 सेकेंड को मिनट का फासला रखा, उसने डिट्टो नहीं रखा, क्योंकि उसको यही देखना था ना कि दोनों एक साथ कैसे चल रहे, संयोग है या विज्ञान है, और इसलिए उसकी वो चेकिंग थी। वो नोटिस क्या किया कि इसने जो अंतर रखा था 24 घंटे होते होते दोनों फिर से हार्मनी में आ गए, और तब उसको लगा ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे विज्ञान काम कर रहा है। तो आया था राजा के पास मेहमान के रूप में एक दिन दो दिन के लिए, लेकिन जब इसको ये बात पकड़ में आई कि ये संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा है, मैं इसे खोज निकालूंगा, और सप्ताहों तक रुका रहा, जब तक कि उसको इसके पीछे का विज्ञान रहस्य समझ में नहीं आया। और इसको समझने के लिए उसने क्या किया? इसको समझने के लिए उसने वो जो दीवार में जो घड़ियाल एक ही दीवार पे लगी थी, यहाँ पे मेन क्या क्षेत्र में आ जाओ, उसी क्षेत्र में आने का ये एग्जाम्पल है कि सेम क्षेत्र में होने से कैसे जिसके पास ज्यादा है जिसके पास कम है, ज्यादा वाले में से कम के पास ट्रांसफर होके दोनों एक लयबद्ध होते हैं, ये समझाने की कोशिश चल रही है। तो उसमें एक घड़ी बड़ी थी, दोनों एक ही दीवार पर लगी थी, लेकिन एक घड़ी बड़ी थी और एक घड़ी छोटी थी। तो इसने क्या किया, वो बड़ी घड़ी के पास जाकर दीवार के पास कान लगाया और नोटिस किया कि इसमें से जो टिक 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 की आवाज निकल रही है ना, ये टिक 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 दूसरी छोटी वाली घड़ी के पास जाकर उसको मूवमेंट प्रदान कर रही है, उसको आंदोलित कर रही है। और वहां से उसने ये निकाला कि ये जो नियम है कि बड़ी घड़ी, चाहे वो फिर बड़ी घड़ी हो, चाहे वो बड़ी वीणा हो, चाहे वो बड़ी सितार हो, अगर उसके पास में छोटी सितार, छोटी वीणा, छोटी घड़ी, तो छोटी का बस नहीं चलने वाला है, बड़ी के रंग में वो रंग जाएगी, बड़ी के रंग में रंग जाएगी, लेकिन कंडीशन एकांत, उसके करीब। हाँ, एक कमरे के दो कोने तो करीब ही हुए ना, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं हुए ना, करीब हो, एकांत हो। और तब उसने निर्णय लिया कि ये जो सिंक्रोनिसिटी की बात है, उस समय तो उसने लयबद्धता ही बात कही, ये तो बाद में अभी लेटेस्ट में सिंक्रोनिसिटी नाम दिया, कि ये हारमनी का, तालमेल का, लयबद्धता का सिद्धांत सिर्फ घड़ी पर नहीं, सिर्फ सितार पर नहीं, सिर्फ वीणा पर नहीं, जीवन के हर आयाम पर लागू होता है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे कुछ नहीं करो, बस आके मेरे पास परमधाम में आके बैठ जाओ। संकल्प करने के लिए भी नहीं कहता है, आके मेरे से बातें करो भी नहीं बोलता है, मेरे पास आकर के बैठ जाओ। तो कई बार हमको लगता है बस इसे पास में बैठे रहने से कुछ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आदत तो इधर संकल्प के ऊपर संकल्प चलाने की है, या संकल्प के ऊपर संकल्प सुनने की है। इसीलिए हिर गए हैं, कमेंट्री से हो तो योग अच्छा रहेगा, बहन जी ने तो एकांत में बिठा दिया, इससे अच्छा योग तो हम सेंटर पे करते थे, मस्त कमेंट्री लगाते थे। आया होगा ना कभी ये भी ख्याल, आया होगा ना ये भी ख्याल, परंतु नहीं, बहुत सुन लिया है हमने, अभी जरूरत है मौन की। सिद्धांत समझ लिया ना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत। बाबा अगर बोल रहा है तो कुछ उसके पीछे रहस्य होगा ना, ये तो हमारा चंचल मन, हमारी संशय बुद्धि, हमारा मैं-मैंपन थमता नहीं, तो हम बोलते हैं ऐसे भी कुछ होता होगा क्या शांति में बैठने से, जैसे वो बोलते हैं ना, नाच ना आए देखो पता है आप सभी को, तो कमी इधर है, ऐसे बैठने से कुछ हो जाता है क्या, चुपचाप जाके बैठ जाओ और हो जाएगा क्या, वहां चुपचाप बैठा ही तो नहीं जाता है। हम जो बोले कि बैठने से कुछ होगा, कि यार बैठा ही नहीं जाता है, हमारा मंकी माइंड वहां पर भी चलता रहता है, हमारी संशय बुद्धि वहां पर भी संशय खड़े करती रहती है, हमारा ईगो वहां पर भी मैं और मेरेपन की बातें कर रहा होता है। और इसीलिए यहां का मौन हम साध सके, अर्थात मंकी माइंड को शांत कर दे, संशय बुद्धि को शांत कर दे, मैं मेरेपन को शांत कर दे। शरणागति, पहले आपने समर्पण शब्द बोला था ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, और बहुत सिंपल अर्थ क्या निकालते हैं हम उसका, सरेंडर। और सरेंडर माना अपना दिमाग नहीं चलाना, यही होता है ना। हम साधारण भाषा में तो बहुत सिंपल, दादियां भी यही डेफिनेशन देती है ना, सर अंडर कर लिया माना अभी अपनी बुद्धि नहीं चलाना, अपना मैं मेरापन नहीं चलाना, अपने संकल्प नहीं चलाना, जो आपको कहा जाए वैसे। बाबा तो यहाँ पे सिर्फ यही कह रहा है, न मन चलाओ, न बुद्धि चलाओ, न मैंपन चलाओ, बस मेरे आके पास में बैठ जाओ। तुम बैठो तो मेरे पास जब तुम्हारी शरणागति होगी, उस साइलेंस में मैं मेगाबाइट तो क्या, किलोबाइट तो क्या, जीगाबाइट तो क्या, टेराबाइट तो क्या, पीटाबाइट सेकंडों में ट्रांसफर कर दूंगा। और उस सेकंड की अनुभूति के साथ जब आप नीचे लौटोगे, आप देखेंगे कार्य व्यवहार में मेरी वो योगमय स्थिति लंबे समय तक कार्य करेगी, मेरे से वो जो ईश्वरीय गुण मेरे एक्टिवेट हुए हैं, करुणा के, परमात्मा को क्या कहते हैं, करुणा का सागर, रहम दिल, उस करुणा के सागर ने, उस रहम दिल ने, उस दयालु ने, उस कृपालु ने, बस हम उसके शरणागति हो गए थे, हमारे ऊपर इतनी करुणा उंडेल दी। तो अब हमारे ऊपर इतनी करुणा उंडेल दी, हम भी करुणा से भर गए। अब हम जब नीचे आएंगे तो हम भी क्या करेंगे, हम किसी को शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है, हम भी करुणा उस पर बरसाएंगे। अर्थात क्षमा करना माना ही क्या, कोई शब्दों से क्षमा नहीं। जैसे कहा ना, बच्चे ने कहा तो मम्मी आपने उठाया क्यों नहीं, तो सामने वाले ने गलती की है सपोज, अब उसको उस गलती से निकालना है, मात्र शब्दों से शिक्षा देने से काम नहीं। मैं भी अपनी एनर्जी उसको सपोर्टिंग फॉर्म में प्रदान, ये होगी हमारी सच्ची करुणा, ये होगा हमारा सच्चा मास्टर मर्सीफुलनेस। वो मर्सीफुल ने तो कह दिया तुम मेरे पास आके बैठो। लौकिक में गीत आता है, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तुझ कुछ कहे ना मैं कुछ। दुनिया में भी ऐसे प्रेम में खोता है इंसान कि कहना भी भूल जाता है, बस उस रूप सौंदर्य को देखकर, रूप सौंदर्य भी नहीं, वो जो प्रेम, प्रेम में जो बंध जाते हैं उसमें वो मगन हो जाते हैं। एक अंदर में आस्था कि ये मेरा है, एक अपनत्व, उसमें सब कुछ भूल जाते हैं, संकल्प उठाने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां पर भी परमात्मा यही कह रहा है, मेरे पास आके बैठ जाओ। लेकिन वहां पास जाके कब होगा, जब मौन होगा, चिन्ह मुद्रा, बुद्धि शांत हो, संशय नहीं उठाए। क्योंकि बाबा ने कहा, क्या कहते हो, मेरा मन कहते हो, मेरी बुद्धि कहते हो, मेरा शरीर कहते हो, मतलब ये आपके उपकरण है ना। तो मन को हम कई बार, हमने क्या एक गांठ मान ली है, मन माना संकल्प करने की शक्ति, अब जिसका काम ही संकल्प करना, वो चुप कैसे बैठेगा? ये एक बिलीफ सिस्टम हमने अंदर में बिठा दी है। अब ये बिलीफ सिस्टम काम कर रही है, योग में बैठे हैं, संकल्प के ऊपर संकल्प किए जा रहे हैं, संकल्प के ऊपर संकल्प किए जा रहे हैं। शांति का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आ रहा है। तो उपकरण है तो मन को शांत करने का मतलब है कि कुछ देर के लिए उस उपकरण को यूज करना बंद करो, साइड में रखो। भाई घर में मिक्सी पड़ी है, जब मुझे मिक्स कुछ पीसना करना है तब मैं यूज करूंगी, वरना साइड में पड़ी रहेगी ना। इतने सारे बल्ब लगे पड़े, लाल बल्ब अभी भी लगा पड़ा है, पर मुझे अभी यूज नहीं करना है ना, तो मैंने उसका स्विच ऑन नहीं किया है ना। तो मन का मौन का मतलब क्या है कि अब इस उपकरण को यूज करने नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए मुझे इसको यूज नहीं करना है, तो इसको ही तो मौन बोलेंगे ना। बस मुझे अपने आप को क्या करना है, शरणागति। तो यूज ना करें उसका फिर क्या तरीका है? कहा ना, बोलना तो इजी है। वो ऋषि कुमार को भी तो खूब पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था ना। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं था ना, तो संदेह के ऊपर संदेह। अनुभूति हो तो फिर इंसान को समझ आए ना कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो मन में संकल्प न उठे अथवा मन के उपकरण को हम न यूज करें, उसका सिंपल उपाय है उसको साक्षी होकर देखें। मन जो संकल्प चला रहा है, संकल्पों की जो धारा चल रही है, उस धारा में बहने के बजाय मैं दृष्टा होकर, वो धारा मेरे लिए एक दृश्य है और मैं दृष्टा उस दृश्य को देख रही हूँ। छोटा बच्चा अकेला होगा, बिना निगरानी में होगा, खूब उछल कूद करेगा, लेकिन जिस घड़ी उसको पता चल जाएगा किसी की आंख मुझे निहार रही है, उसकी उछल कूद, उसके करतूतों की स्पीड धीरे धीरे कम होते होते जीरो पे चली जाती है। है सभी को प्रैक्टिकल अनुभव या थियोरी सुना रही हूं मैं? मन भी बच्चा है, इसके ऊपर हमने निगरानी नहीं रखी है, इसको हमने अनाथ छोड़ दिया है। तो अनाथ बच्चों के लिए तो कहते हैं ना, भाई बचपन में ही माँ बाप चले गए, इनके ऊपर निगरानी रखने वाला नहीं था, तो अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? माँ बाप होते हैं, निगरानी रखते हैं, बच्चे तो आदत के वश ट्रैक से बाहर जाते हैं, लेकिन माँ बाप निगरानी रख रख के उसको वापस ट्रैक पर लेकर आते। तो हमने मन के ऊपर निगरानी रखी है, हम तो उसके साथ बह जाते हैं। तो जब निगरानी रखना शुरू करेंगे, या यूं कहे मन के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दो, तभी का ध्यान देना पड़ता है। ध्यान लगाना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। जब ऐसे ध्यान देंगे तो रियली मन रूपी उपकरण, बुद्धि रूपी उपकरण साइड में पड़े रह जाएंगे और बचूंगी मैं आत्मा। मैं आत्मा ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं। दृष्टा उसको कहा जाता है जो देखने वाले को देखता है। आत्मा खुद दृष्टा है, खुद ज्ञाता है, खुद को देख रही है और खुद को लेके जा रही है उस परमात्मा के क्षेत्र में। शरणागति कर दी, बाबा आपने कहा मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं आ गई आपके पास, बस उस क्षेत्र में साइलेंस रह जाओ। थोड़ी घड़ी की भी शांति बहुत बड़ा वंडर करेगी, बाबा की शक्ति ट्रांसमिट होगी। जन्म जन्म के संस्कार जो अपनी मेहनत से भी नहीं छूट रहे हैं, जो पुराने जो अच्छे नहीं हैं, वो सब बस में भूत हो जाएंगे और हम पाएंगे हमारे जीवन में अचानक से चेंज, जो इतनी मेहनत कर रहे थे फिर भी चेंज नहीं आ रहा था और अब कितने जल्दी चेंज। इसी के लिए तो बोलते हैं क्यों गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, गुरु ने बोला ना अब हो जाएगा, यही भावना होती है ना, बस गुरु ने शक्ति भर दी, सुप्रीम गुरु है ना वो तो, आदि गुरु। तो दक्षिणा मूर्ति शिव को आदि गुरु आदि योगी कहा गया है। यहां की नहीं लगती है बातें सारी, संगम की बातें नहीं लगती है, वो ऋषि कुमार कौन, ब्रह्मा के मानस पुत्र, हम कौन है, वो भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमार। तो जैसे उनको आत्मानुभूति हो गई ऐसे हमें भी होगी। तो हमारी आत्मानुभूति हुई मतलब हमने अपने ऊपर रहन किया, मतलब हमने अपने आप को उस ऊर्जा से, ईश्वरीय ऊर्जा से भरा है। तो अब आसुरी निकल गए तो रास्ते के जो बादल थे वो तो बिखर ही गए, पर्दा बिखर गया तो रोशनी बाहर अपने आप जा रही, किरणें अपने आप जा रही। तो जो भी मेरे संबंध संपर्क में होंगे, किसी से कोई गलती हो भी जाती है, चलो शिक्षा में दो शब्दों में दे भी दूं, लेकिन उससे बढ़कर उनको भी मैं क्या करूं, उस आत्म स्वरूप में देखकर एनर्जी ट्रांसमिट करूं। और आत्म स्वरूप में देखना माना ही उसके प्रति जो उसने गलती की है या जो हमने जैसा चाहा वैसे नहीं किया है, उसके प्रति जो हमारे अंदर में क्रोध या चिड़चिड़ापन आदि जो कुछ उठता है वो न उठना भी अपने आप में हमने उसको क्षमा किया है, ये न उठना भी हमने अपने आप में उसको क्या की है, करुणा की है। वरना हम तो फटाफट से गुस्सा कर देते हैं, चिड़चिड़ा कर देते हैं, चार लोगों के बीच में उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं, इसको इसको बताते हैं, आप इसको अच्छा बताते हैं, मेरे साथ तो उसने ऐसे किया है, तो ये फिर करुणा नहीं होगी, ये रहम दिल नहीं होगा। तो क्लियर हुआ, मास्टर मर्सीफुल हम कैसे बनेंगे। और तब फिर बाबा ने कहा दुआएं देना, वही कहा ना क्षमा करना माना दुआएं, ब्लेसिंग्स, एनर्जी। ब्लेसिंग्स क्या, एनर्जी पॉजिटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, दैवी शक्ति ईश्वरीय शक्ति दे रहे हम उसको, वही दुआएं जो देंगे हम तो फिर हमारे जड़ चित्रों से भी हम देते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे, यही हमारा मास्टर मर्सीफुल स्वरूप न सिर्फ संगम पर आने वाले नए कल्प में भी। दो युग तक तो हम मर्सी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम पूज्य स्वरूप में आएंगे हमारे जड़ चित्रों से भी मर्सी आत्माओं को मिलती रहेगी। इसको कहेंगे हम सच्चे अर्थों में मास्टर मर्सीफुल बने हैं। ओम शांति। हाँ थोड़ा सा पहले योग कर लेते, योग का टाइम है, फिर 7:30 के बाद। तो क्लियर है ना, साइलेंस में करेंगे ना अभी योगा, करेंगे ना। और एक स्टेप बता दूं कि वहां जाने के बाद जो हम उसके पास में बैठकर जो शक्ति एकत्रित करेंगे, फिर जो थोड़ा मन फिर से अगर उठने लग भी जाएगा तो फिर हम देने का काम, करुणा बांटने का काम आरंभ कर देंगे। क्योंकि दुनिया में भी अगर आपने अपने लिए खूब कमाया लेकिन बांटा नहीं तो रियल खुशी जीवन में नहीं आती है। तो करुणा उधर से ली और इधर दुनिया को बांटी। वो तो प्रैक्टिकल था कि गलती, पर दुनिया तो दुखी है ना आज, तो उसको फिर बांटते चलेंगे। और इस तरीके से हम अपने आप को मंकी माइंड, संशय बुद्धि और मैं मेरेपन से बचा कर रखेंगे और सही मायनों में कमाई कर पाएंगे। तो चलिए योग करते हैं।
Dude.